Hi, now we'll be talking about the Rajputs, which we left in between in the last podcast. So, abhi hum Rajputs ke baare mein baat karenge, that what happened to them. Simultaneously, humne baki jo provinces the, unme kya chal raha tha, unke baare mein padha. Ab hum Rajputs ki baat karte hain. Jo Rajputs chief the, wo Akbar ke time se hi unhone ek strong support diya tha Mughal Empire ko. और बहुत सारे राजपूत चीफ जो हैं उन्होंने लेकिन रिवॉल्ट भी कर दिया था औरंगजेब के अगेंस्ट, बिकॉज औरंगजेब ने जब ट्राई किया उनके मैटर्स में इंटरफेयर करने का और जो जो उनको प्रिविलेजेस मिली थी उनके एंसेस्ट्रल लैंड वगैरह उनसे छीनने का, देन दे ऑल्सो ट्राइड टू इंटरफेयर एंड देन दे ऑल्सो स्टार्टेड रिवॉल्टिंग अगेंस्ट द मुगल एम्पायर औरंगजेब के टाइम पे. और लेकिन जब औरंगजेब की डेथ हो जाती है तो दे ट्राई टू फ्री देमसेल्व्स. राजपूत ने भी पूरा ट्राई किया कि वो उनके एम्पायर से अलग हो जाए फ्रॉम द कंट्रोल ऑफ मुगल एम्पायर. और उन्होंने ये भी ट्राई किया कि वो अपना जो है इन्फ्लुएंस है वो बढ़ाएं. और जो रूलर्स थे जोधपुर के और अम्बेर के, और उनको गवर्नर्स बना दिया गया था गुजरात का और मालवा का. एंड कुछ टाइम तक ऐसा लग रहा था कि राजपूत वर रिगेनिंग देयर पोजिशन एंड इन्फ्लुएंस इन द एम्पायर एंड इमर्जिंग एज अ मेजर सपोर्ट अगेंस्ट द जाट्स एंड द मराठास. कुछ टाइम तक ऐसा लगा कि राजपूत अपनी पोजीशन रीगेन कर रहे हैं, उनका इन्फ्लुएंस बढ़ रहा है और वो एक मेजर पावर की तरह सामने आ रहे हैं. और जाट्स और मराठा उसको शायद अच्छी खासी टक्कर देंगे. और जो मोस्ट आउटस्टैंडिंग राजपूत रूलर था इस टाइम पे वो था सवाई राजा जय सिंह, जो कि आम्बेर के थे 1681 से लेके 1743 तक ही रूल्ड. और ही बिल्ट द ब्यूटिफुल सिटी ऑफ जयपुर एंड इरेक्टेड एस्ट्रोनॉमिकल ऑब्जर्वेटरीज बनाई हैं सवाई राजा जैसे ने. और ये ऑब्जर्वेटरीज दिल्ली में, जयपुर में, बनारस, उज्जैन और मथुरा में हैं. और लेकिन राजपूत का जो इन्फ्लुएंस है वो ज़्यादा देर तक रहा नहीं. एंड दे वर सो इन्वॉल्व इन देयर म्यूचुअल राइवलरीज that उनके पास बाकी चीज़ों को करने के लिए टाइम ही नहीं बचा. दे डिड नॉट हैव द स्ट्रेंथ ऑल्सो टू फाइट एंड टू कम्प्लीट एक पावरफुल एम्पायर बनने के लिए. दे डिड नॉट हैव द स्ट्रेंथ, प्लस दे डिड नॉट हैव द रेवेन्यू, प्लस दे डिड नॉट हैव द पावर. उसके बाद जब हम देखते हैं कि जाट्स वर राइजिंग इन पावर, मराठास वर राइजिंग इन पावर, और प्रोविंशियल रूलर्स जो हैं वो अपनी जो है पावर कहीं ना कहीं खो रहे थे क्योंकि उनके पास से उनकी जागीर जा रही थी एंड देयर इन्फ्लुएंस बिगिन टू श्रिंक. और जो भी इन्फ्लुएंस था, पॉलिटिकल इन्फ्लुएंस था राजपूत का, इट स्टार्टेड डिक्लाइनिंग. एंड इन्फ्लुएंस ऑफ अ ग्रुप ऑफ राजस्थानीज जो है इकोनॉमी में, उनका थोड़ा सा इन्फ्लुएंस बढ़ गया, लेकिन कहीं ना कहीं राजपूत का इन्फ्लुएंस जो है वो डिक्लाइन हो चुका था उस टाइम पे. और ये जो राजस्थानीज हैं, दीज वर द मर्चेंट्स जो ऑलरेडी जो हैं अक्रॉस द कंट्री, दे ट्रेडेड बिटवीन द इम्पोर्टेंट सेंटर्स इन गुजरात, दिल्ली, आगरा एट दैट टाइम. और जब डिक्लाइन होता है एम्पायर का तो जो कमर्शियल इम्पोर्टेंस है इन सेंटर्स की, जहाँ से बेसिकली ट्रेड होता था, वो भी कम हो गई और इनकी इम्पोर्टेंस बहुत ज़्यादा ये डिक्लाइन होने लग गए, ये जो भी ट्रेड सेंटर्स थे. एंड देन दे शिफ्टेड टू द न्यू सेंटर्स एंड बिगिन टू कंट्रोल द ट्रेड. अब वो शिफ्ट हो गए नए नए सेंटर्स पे एंड कॉमर्स. ये नए सेंटर्स जो सामने आते हैं वो बंगाल, अवध और डेक्कन को बना दिया गया. अब हम थोड़ी सी बात सिक्स की कर लेते हैं, व्हाट वाज गोइंग ऑन विद द सिक्स. एंड सिक्स के बारे में हमें पता है कि दे वर नॉट एबल टू फाउंड अ स्टेट ड्यूरिंग द रेन ऑफ औरंगजेब. तो नहीं हुआ था बिकॉज वो एक ऑर्गेनाइज वे में नहीं लड़ाई कर रहे थे. दे वर फाइटिंग इन ग्रुप्स एंड that is why they were not able to start a state or an empire. And unka jo last guru the, that was Guru Gobind Singh. And after the death of Guru, Sikhs ko ek capable leader bhi mila jiske under unhone they started fighting, that was Banda Bahadur. And Sikhs ne bahut acha khasa resistance dikhaya Mughals ko and they overran the whole territory between Lahore and Delhi. लेकिन दे वर डिफीटेड एंड बंदा बहादुर वॉज पुट टू डेथ. एंड सिक्स को ये समझ आया कि नाउ दे हैव टू रीऑर्गेनाइज देमसेल्व्स एंड दे स्टार्टेड रीऑर्गेनाइजिंग देमसेल्व्स वेरी सून. एंड फॉलोइंग द इन्वेजन ऑफ नादिर शाह, जो कि बाहर से आया था लूट के मसले से इंडिया में आया था, जो मुगल अथॉरिटी है पंजाब में वो डिक्लाइन हो गई बिकॉज नादिर शाह ने इन्वेड कर दिया एंड कंफ्यूजन था वहां पे एज अ रिजल्ट ऑफ द कंफ्लिक्ट बिटवीन द अफगान्स एंड द फॉलोअर्स ऑफ नादिर शाह लेफ्ट इन द रीजन. ये थोड़ा सा कंफ्यूजन चला इस टाइम पे कि नादिर शाह ने इन्वेड किया, किसका रूल है, अफगान्स का रूल है, नादिर शाह का रूल है, मुगल्स का रूल है. दैट वॉज अ वेरी कंफ्यूजिंग टाइम पीरियड. एंड इस चीज का फायदा उठाते हुए सिक्स ने ऑक्यूपाई करनी शुरू की प्रोविंसेस स्टेप बाय स्टेप. एंड उन्होंने 12 छोटे छोटे स्मॉल ग्रुप्स बनाए, दे वर कॉल्ड मिसल्स. एंड इन मिसल्स के जो लीडर होते थे दे वर पार्सल्ड आउट, और वो अपने आपस में ना टेरिटरीज को बांट लेते थे. एंड इवन जो अहमद शाह अब्दाली है ही वॉज अनएबल टू डिस्ट्रॉय द मिसल्स. एंड 2 साल के बाद ही डिपार्चर के जो गवर्नर अपॉइंट हुए थे उसके थ्रू सरहिंद में, लाहौर में, दे वर ड्रिवन आउट. अहमद शाह अब्दाली जो है ना वो भी इन मिसल्स को डिस्ट्रॉय नहीं कर पाया था. दैट मीन्स दीज मिसल्स वर सो स्ट्रॉन्ग. एंड स्मॉल प्रिंसिपैलिटीज हैं लाइक नाभा, पटियाला, कपूरथला, ये छोटी छोटी प्रिंसिपैलिटीज इमर्ज हुई. एंड इट वॉज टूवर्ड्स द एंड ऑफ 18th सेंचुरी दैट महाराजा रणजीत सिंह जो है ही यूनाइटेड द मिसल्स एंड एस्टैब्लिश्ड अ पावरफुल स्टेट. महाराजा रणजीत सिंह ने 18th सेंचुरी में एक पावरफुल स्टेट बनाई. उससे पहले दीज सिक्स वर डिवाइडेड इन स्मॉल स्मॉल ग्रुप्स. एंड अब हम बात करते हैं कर्नाटक एंड मैसूर की. बहुत सारी स्टेट्स जो 18th सेंचुरी में हमारे सामने आती हैं. सम ऑफ दीज स्टेट्स दे गेन प्रोमिनेंस इन द सेकेंड हाफ ऑफ द सेंचुरी एंड दे बिकेम इन्वॉल्व इन कंफ्लिक्ट विद द यूरोपियन कंट्रीज, क्योंकि उस टाइम पे बहुत सारी यूरोपियन कंपनीज जो है इंडिया में आ रही थी, तो कुछ कुछ स्टेट्स के उनके साथ पंगे होने लग गए. यू विल रीड अबाउट देम लेटर. और जो सूबा है कर्नाटक का ग्रेजुअली फ्रीड इटसेल्फ फ्रॉम द कंट्रोल ऑफ द मुगल गवर्नर ऑफ द डेक्कन. इस टाइम पीरियड में जितने भी हमें 18th सेंचुरी और हाफ ऑफ द 18th सेंचुरी में जितने भी प्रोविंसेस देखेंगे दे आर एक्चुअली ट्राइंग टू फ्री देमसेल्फ फ्रॉम द मुगल्स एंड दे आर ट्राइंग टू एस्टैब्लिश देयर ओन एम्पायर. एंड इस टाइम पे डेक्कन की अगर हम बात करें तो उसने भी मोर और लेस अपने आप को फ्री कर लिया था फ्रॉम द अथॉरिटी ऑफ द मुगल एम्परर. एंड उसने एक आसफ जाही डायनेस्टी एस्टैब्लिश की थी ऑफ द निजाम्स ऑफ हैदराबाद. और 1761 में हैदर अली जो जिसने अपना करियर एक ऑर्डिनरी सोल्जर की तरह शुरू किया, उसने जो मैसूर में डायनेस्टी रेन कर रही थी उसको ओवरथ्रू किया एंड उसने अपना खुद का कंट्रोल वहाँ पे स्टार्ट किया ओवर द स्टेट. हम हैदर अली की बात कर रहे हैं जो कि एक छोटा सा ऑर्डिनरी सोल्जर था एंड देन ही बिकेम द किंग ऑफ मैसूर. उसके बाद हैदर अली और उसका बेटा और उसके सक्सेसर्स ने ये स्टेट को काफ़ी टाइम तक चलाया. एंड टीपू सुल्तान जो है वो भी बहुत एक एबल रूलर था एंड उन्होंने बहुत एक इम्पोर्टेंट रिफॉर्म्स लाए जिसकी वजह से मैसूर जो है वन ऑफ द मोस्ट पावरफुल स्टेट्स बन गया इंडिया में. फॉर एग्जाम्पल उन्होंने मॉडर्न मेथड्स ऑफ मिलिट्री ट्रेनिंग, ऑर्गेनाइजेशन, सब ये सब चीज़ें उन्होंने लाई, वर्कशॉप्स बनाई एंड दे ऑल्सो ट्राई टू इंट्रोड्यूस सम ऑफ न्यू इंडस्ट्रीज. एंड अगर हम रिलीजियस मैटर्स की बात करते हैं तो दे वर वेरी एनलाइटेंड एंड ब्रॉड माइंडेड पीपल. दस वॉन्ट द लॉयल्टी एंड सपोर्ट ऑफ ऑल देयर सब्जेक्ट्स. अब आप थोड़े लिबरल रहोगे तो यू विल गेट द सपोर्ट ऑफ योर सब्जेक्ट्स, दैट इज वेरी ऑब्वियस. एंड अनलाइक मोस्ट ऑफ द इंडियन रूलर्स ऑफ द टाइम दे वर अवेयर ऑफ द डेवलपमेंट्स इन द वर्ल्ड. सो ये जो मैसूर में जो भी हो रहा था दे वर वेरी मच अवेयर कि वर्ल्ड में क्या हो रहा है. ये बाकी चीज़ों से दे वर अवेयर अबाउट एवरीथिंग. अब हम बात करते हैं एक्सपेंशन एंड डिक्लाइन ऑफ द मराठा पावर. शिवाजी के बारे में हमने ऑलरेडी पढ़ा है कि उन्होंने मराठा किंगडम को एस्टैब्लिश किया था ड्यूरिंग द रेन ऑफ औरंगजेब. लेकिन औरंगजेब की डेथ के बाद शिवाजी के जो ग्रैंडसन हैं उनको रिलीज कर दिया गया फ्रॉम द कैप्टिविटी. उसके बाद तारा बल जो है विडो है राजा राम की, उसने अपने बेटे को एक राइवल किंग की तरह इंस्टॉल कर दिया एट कोल्हापुर. लेकिन शाहू जो है वो सातारा पे रूल कर रहा था. शाहू वॉज द ग्रैंडसन ऑफ शिवाजी. एंड इसकी वजह से ये थोड़ा दो ग्रुप्स में बट गए थे ये लोग मराठास. एंड इसलिए इनके जो सपोर्टर्स थे वो भी दो ग्रुप्स में बट गए थे. अल्टीमेटली जो है शाहू शाहू सुप्रीमेसी वॉज फॉर्मली एस्टैब्लिश एंड शाहू स्टार्टेड रूलिंग द मराठा एम्पायर. अब हम बात करते हैं पेशवाज की, राइज ऑफ द पेशवाज। बालाजी विश्वनाथ जो है कंट्रीब्यूटेड ग्रेटली टू द सक्सेस ऑफ शाहू। शाहू की जितनी भी सक्सेस हमें देखने को मिली, वाई शाहू वॉज सक्सेसफुल इन डिफीटिंग द अदर कॉम्पिटिटर, दैट वॉज ताराबल जो है विडो है राजा राम की, उसके बेटे को उसने वहां पे गद्दी पे बिठाया था। एंड शाहू वॉज एक्चुअली इन ऑपोजिट ऑफ दैट ताराबल सन। अब हम पेशवाज की बात करें तो बालाजी विश्वनाथ ने बहुत कंट्रीब्यूशन दिया है शाहू की सक्सेस में। एंड ही रोज टू द पोजिशन ऑफ शाहू एंड उसने इनागोरेट किया एन एरा ऑफ मराठा एक्सपेंशन। इट वॉज बिकॉज ऑफ बालाजी विश्वनाथ ओनली कि मराठा जितना ज्यादा एक्सपैंड कर पाए। ही एंटर इन टू अ पैक्ट विद वन ऑफ द सैयद ब्रदर्स। सैयद ब्रदर्स के साथ ये जो है बालाजी विश्वनाथ, उन्होंने एक पैक्ट किया और जितनी भी टेरिटरीज बनी थी शिवाजी के किंगडम में वो रिस्टोर होकर शाहू को मिल गई। एंड उसको चौथ और सदेशमुखी 6 सूबों से आता था जो कि साउथ में थे, और इसके बदले में शाहू ने एग्री किया कि टू प्लेस अ फोर्स ऑफ 15,000 कैवलरी इन द सर्विस ऑफ द एम्पायर। और 1719 में जो मराठा फोर्सेस थी लेड बाय द पेशवा, दे हेल्प वन ऑफ द सैयद ब्रदर्स इन ओवर थ्रोइंग फारूक सियार। तो हमें पता है कि फारूक सियार को किंग बनाया भी सैयद ब्रदर्स ने था और उतारा भी सैयद ब्रदर्स ने था। देन ये जो है सैयद ब्रदर्स, इनको हेल्प किया था पेशवा ने ताकि ये ओवर थ्रो कर सके फारूक सियार को। और दिल्ली में मराठास ने विटनेस की कि मुगल एम्पायर जो है वो वीक होता जा रहा है। एंड नाउ दे वर फिल्ड विद द मिशन ऑफ एस्टैब्लिशिंग अ मराठा सुप्रीमेसी। So the office of the Peshwa became the most powerful office at the time and soon eclipsed the authority of the Maratha king. Even Peshwa की जो power थी वो Maratha king से भी ज़्यादा हो गई थी। And जब हम बालाजी विश्वनाथ की बात करते हैं, he was succeeded by his son Bajirao I in 1720 and उसने policy start की, the policy of fighting an offensive war against the Nizam and of extending Maratha power in the north. लेवी ट्रिब्यूट, उसकी ये पॉलिसी थी कि वो निजाम के खिलाफ लड़ाई लड़ेगा, एक्सटेंड करेगा मराठा पावर नॉर्थ में भी, और ट्रिब्यूट ऑब्वियसली वो टैक्सेस कलेक्ट करते थे वो तो रहेगा। तो ही कॉन्कर्ड मालवा, बाजीराव वन की बात कर रहे हैं, सदन गुजरात भी कॉन्कर किया, बुंदेलखंड किया और बहुत सारी रेड कंडक्ट कराई, इवन अप टू द वेरी गेट्स ऑफ दिल्ली। लेकिन उसने दिल्ली को ऑक्यूपाई नहीं किया था क्योंकि मुगल एम्परर स्टिल कैरीड कंसिडरेबल प्रेस्टीज एट द टाइम, और जो मराठा रेड थे दे वर नॉट कंडक्टेड फॉर कंक्वेस्ट, दे वर प्राइमरली हैविंग इंटरेस्ट इन लेइंग देयर हैंड्स ऑन अ मेजर पार्ट ऑफ द लैंड रेवेन्यू ऑफ दोज एरियाज। सो उनको वहाँ का लैंड रेवेन्यू चाहिए था तभी वो लोग रेड्स कर रहे थे। उसके बाद बाजीराव का जो सन है बालाजी बाजीराव, उसने भी अपने फादर की पॉलिसी को कंटिन्यू किया और उसकी पेशवाशिप के अंडर जो मराठास थे दे रीच एज फार एज बिहार एंड उड़ीसा इन द ईस्ट। ईस्ट में वो बिहार एंड उड़ीसा तक पहुंचे और पंजाब में पहुंचे वो नॉर्थ की तरफ, और दिस वॉज द पीरियड ऑफ द ग्रेटेस्ट एक्सपेंशन ऑफ द मराठा पावर। और लेकिन कुछ ना कुछ वीकनेसेस भी थी मराठा एम्पायर की। वो ये थी कि जो मराठा थे दे वर नेवर एबल टू डेवलप अ पॉलिटिकल सिस्टम विच कुड हेल्प देम टू कंसोलिडेट देयर कंक्वेस्ट एंड एस्टैब्लिश अ स्टेबल एडमिनिस्ट्रेशन। तो उनका जो पॉलिटिकल सिस्टम था वो एक प्रॉपर पॉलिटिकल सिस्टम डेवलप नहीं।